नौकरानी को झाड़ू दिखाने के समय एक घर में नई बहू आई, वो बातें नहीं सुनती अपनी सास, तो नौकरानी घर में झाड़ू दे रही है, तो उसने कहा कि तुमको देखो झाड़ू उठाए, तुम मेरी बात नहीं सुनती है ना, तो मैं तुम्हें इस झाड़ू से तुम्हारे तुमको पीटूंगी। तो इसका मतलब क्या? वो झाड़ूदारनी नहीं समझ रही ये किसके लिए, मैंने तो काम ठीक किया। तो वो आकर के पीछे से जब रोने लगी कि मैं आपने हमको क्यों ऐसा कहा, अरे तेरे लिए नहीं कहा, वो अपनी बहू की बतलाने के लिए जिसे ये कहा, उसको तो डायरेक्ट बता नहीं सकती, इसलिए तुमको तुम्हारे बहाने उसको शिक्षा दी। इसी प्रकार से कृष्ण ने कहा जो तेरे लिए नहीं उपदेश है, ये तो संसार में जो फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए हमने। इसी प्रकार से यहाँ पर गोपियाँ कृष्ण को कह रही हैं आहुष्यते नलिना, नलिना मैंने नाभि से जिनका कमल, ऐसे कमल नाभ कैसे ये खिलता है, कमल कैसे खिलता है, सूर्य से खिलता है। इसलिए हे गुरुदेव आप सूर्य के समान हैं, आपकी किरणें बड़ी प्रखर हैं, इसका ये तात्पर्य, आपके इनके किरणों को उपदेश रूपी किरणों को हम लोग सपने में हम लोग असमर्थ हैं, यहाँ तक कि हृदय कोष भी जला जा रहा है, सूख रहा है आपके उपदेश से, तो किस लिए कि आप लोग हमारा ध्यान कीजिए। अगाध बोधई अचिंत अगाध बोधई, अचिंत अगाध बोधई मैंने क्या, वो जो ऋषि महर्षि लोग हैं ब्रह्मा इत्यादि शंकर इत्यादि अगाध बोध सब, ये लोग ध्यानस्थ होकर के सनक सनंदन सनक मान अगाध बोध स्वरूप ये आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, किंतु आपके चरण कमलों का ध्यान इनके हृदय में आता नहीं है। जब ऐसे बड़े बड़े ऋषियों के हृदय में अगाध बोध वाले जो परम योगी हैं, संसार से परम विरक्त हैं, ऐसे योगियों के हृदय में भी भक्ति के द्वारा निर्मल चित्त भी है, तो उनका नहीं आता। हम साधारण ग्वारी मूर्ख, हम लोग गायों के कंडों को देने वाले, दूध का कारोबार करने, स्कूल कॉलेज शहर से हमारा कोई संबंध नहीं, तो हम ऐसे आपके चरणों कमलों का भला ध्यान करने में समर्थ हैं? ये तो उन योगियों को ही शिक्षा देनी चाहिए। आपको अपात्र और पात्र का विचार नहीं शायद, इसलिए ऐसा कर रहे, ये उपदेश हम लोगों को देना, मैंने वो मरुभूमि में कोई बीज या पत्थर पर कोई बीज डाल, इस तरह से ये उपदेश। और आपके चरण कमल जो कैसे हैं, संसार को पतिता तरण बलम्बम, संसार में कूप में जो पड़े हुए हैं, संसार कूप माने सम स्थिति, माने क्या, जन्म होता है फिर बढ़ते हैं, फिर इसके बाद में प्रौढ़ होते हैं, इसके बाद में वृद्ध होते हैं, फिर धीरे धीरे और झड़ने लगते हैं, जट वृद्धावस्था आती है, और इसके बाद में फिर खत्म, जायते अस्थि बढ़ते विप्रणते अपक्षीयते विनश्यते, ये छह शरीर के ये लक्षण। जन्म सबका होगा, जन्म होगा और थोड़ा बढ़ेगा, जायते अस्थि बढ़ते बढ़ता है, फिर इसके बाद में बढ़ जाता है पूरा 50 वर्ष तक, इसके बाद में
अपक्षीयते
अब क्षय होने लगता है, इसके बाद में
भी कोई
अत्यंत जड़ विद्ध हो करके एकदम जीर्ण शीर्ण बन जाता है, और इसके बाद में इस चूल्हे को यही इसको कहते हैं विनश, कोई भी चीज होगा ऐसे ही उसका, इसके प्रति जो आसक्त होगा ये संसार कितने पड़ा है, इसमें जन्म जन्मांतर से किसी ने लगा हुआ, उस कूप में पड़े हुए लोगों के लिए बस एक ही उपाय है, आपके चरण कमलों का ध्यान। योगी लोग तो ध्यान करते हैं, और इधर में संसार रूप में पढ़ने वाले व्यक्ति भी यदि भगवान के नामों का स्मरण करें, उनका ध्यान करें, तो उनमें से निकल सकते। गोपिया कर रही हैं हमों के लिए बड़ी बहुत सुंदर ये आपने शिक्षा दी, किंतु ये बतलाओ कि हम संसार रूप में पढ़ी कब, पढ़ी कब? बचपन से ही तो हमने आपसे प्रेम किया और आपके अतिरिक्त और दूसरे को हमने देखा नहीं। हम तो ये चाहते हैं बड़े बड़े योगेश्वर लोग जो ध्यान करते हैं आपका चरण कमल, और ध्यान में आपके चरण कमल नहीं आते, और हम चाहते हैं उन चरण कमलों को जो सब समय बरवश याद आते हैं उनको हम भूल जाए। हमारे जितनी दुर्गति का कारण, सबसे हमारे चित्त चंचल का कारण, हमारे क्लेशों का कारण, हमारे विक्षिप्त होने के कारण, हमारा मोह इत्यादि का कारण क्या है? तुम्हारा स्मरण। हम आपको भूलने के लिए जाते हैं यमुना के किनारे, जब यमुना के किनारे जाते हैं देखते हैं तो वही घाट जहाँ पर हमारी घड़े को तोड़ दिया, या कहें तुम्हारे घड़े को उठा दूँ, एक कोई गोपी एक घड़े को उठा रही है पानी भरने के लिए आई, पानी भरने का उद्देश्य उसका भी वैसे ही है, उसी के लिए आई, और कृष्ण भी वहाँ पर पहुँचे, और वो कृष्ण को देखते हुए भी कृष्ण को नहीं देख रहे, और वो पानी में घड़े उठा करके जब भर गया तो वो झुक करके वो पानी उठा रही थी, तो उसको तो परिश्रम लगता है ना घड़े में पानी, और ये खिन्न शरीर थी, कृष्ण वहाँ से आकर कहते मैं घड़े को उठा दूँ प्लास्टर लगा दूँ जो यह सब हाँ कहे नहीं आप भूल रही है आप पूजे हो आई है उसी, अब वही लीला उनको स्मरण हो रही है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर कृष्ण की स्मृतियाँ नहीं, प्रत्येक तरु लता गुलमा सर्वत्र कृष्ण की स्मृतियाँ वहाँ छोड़ करके जाती हैं गिरिराज गोवर्धन, वहाँ पर भी प्रत्येक वृक्ष लता सब कृष्ण की स्मृति जगाती है, जहाँ भी जाते हैं कृष्ण को भूल नहीं पा। तो हम आपको भूलने की चेष्टा करते हैं और आप कहते हैं जैसे आप संसार रूप में पड़ी हुई है तुम लोग हमारा ध्यान लगाओ, हमारा तो ऐसे ही ध्यान लगा हुआ, हम तो छोड़ना चाहते हैं और हमको ऐसी शिक्षा। उस समय में कृष्ण ने कहा क्या भक्ति वही भक्ति भूतानां अमृतत्वाय, कृष्ण निरुत्तर हो गए। मैंने कहा ये संसार के लिए मैंने कहा, तुम लोगों के लिए नहीं। तब कृष्ण ने बाध्य होकर के कहा मई भक्ति ही भूतानां अमृतत्वाय कल्पते, अमृत पाए मैंने अमृत है किसके लिए? भूताना प्राणी मात्र के लिए हमारी जो भक्ति है वो अमृत के समान है। अमृत किसको कहते हैं? नामृत इति अमृत, जो कभी नहीं मरता है उसको कहते हैं अमृत। कैसे नहीं मरेगा? बस एक ही उपाय है भगवान के प्रति जनी स्मरण कीर्तन श्रवण इत्यादि करें, उनका नाम की उनकी कथाओं का श्रवण, उनके नामों का कीर्तन और उनकी लीलाओं का चिंतन यदि करता है, उनके धाम को आश्रय करके उनके भक्तों का आश्रय करके जो भी करेगा ये भूता नाम अमृत वाय करते हैं। इसी से वो अमृत माने फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा और भगवान को प्राप्त करके उसका जीवन सकता। किंतु हो गोपियों तुम्हारे अंदर में तो इस भक्ति की अंतिम अंतिम स्थिति है वो तुम्हारे अंदर में, वो स्नेह कर भक्त अमृताय कल्पते मत स्नेहो भौती नाम पदार्थ, तुम्हारे अंदर में ये स्नेह है। स्नेह किसको कहा था? स्नेह माने तरल को, चित्त की वस्तुति या कृष्ण संबंधी भावनाओं के द्वारा चित्त आकृष्ट होकर के, और स्नेह माने तरलता की स्थिति में आ जाता है उसको कहते हैं स्नेह। जैसे बहुत दिनों के बाद में पुत्र आ रहा है बाहर से कहीं से, मैया ने देखा और आंखों में आंसू उसके गिर गए, यह है तरलता। तो वैसे कृष्ण के प्रति ऐसा यदि स्नेह हो प्रवित अवस्था तो उसको स्नेह कर, तुम्हारा हमारे प्रति ऐसा स्नेह, इसलिए मदापन मदापन मैंने क्या मत अपना माने प्राप्ति कराने वाला है। अब दोनों को हमको आपन माने करना माने मैं तुमको अपना बना रहा हूं, माने मिल रहा हूं, वही हमको तुमको मिला। जो स्नेह है, जिसके अंदर में स्नेह है उसको भगवान प्राप्त हो गए, ऐसा इसलिए गोपी होता है। तुम एक ऐसी स्थिति में हो, भक्ति की अवस्था ही क्या है, भक्ति बढ़ करके स्नेह मान प्रणय राग अनुराग अवस्था में आ गई है, वो कहते हैं स्नेह तुमको हो गया। इसलिए अब हमारा मिलना तुम्हारा अब कोई रोक नहीं सकता, मैं दो एक दिन में ही अब तुमको है, कभी कल की बात नहीं, आज ही हमारे साथ में चल तो भी। बस कृष्ण उनके मनोरथ पर चढ़े और तुमको लेकर के गोपियों ने कहा, गोपिया मैंने श्रीमती राधिका जी ने कहा, उन्होंने ये कहा, जा कौमार हर स एव ही बरह एव चित्र चैत्र खपा ते चुन मिलित मालती सुरभय प्रौढ़ा खतम मानिल। महाप्रभु जी इसी भाव को जब कृष्ण को गोपियां ला रही हैं अपने मनोरथ पर चढ़ाकर वृंदावन में ला रहे, कृष्ण को गोपियों ने कहा जैसे अभी आपको वृंदावन चलना पड़ेगा, ये क्यों चलना पड़ेगा, तो इसलिए आपने कहा जोगुल आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम भी ध्यान करते हैं। तो ध्यान में जैसे उनके चरण कमलों को अपने चरण कमलों को उनको हृदय में आप प्रकाशित करते हैं ऐसे आप करेंगे ना, तो कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ, ध्यान करो। अच्छा ठीक, देखो उनका मन और हृदय दो है और हमारा मन और हृदय एक है, मन कहाँ रहता है और हृदय कहाँ रहता है,
मन मस्तिष्क
और ये जो मन कुछ विचार करता है, हृदय विचार नहीं करता, बस दे दिया तो सर्वस्व दे दिया। इस प्रेम की प्रधानताइयां हैं और इसमें विवेक की प्रधानता है, वो अच्छा बुरा नाना प्रकार की चिंता करके वो
करेगा
और ये सब कुछ नहीं, वहां पर प्रेम की प्रधानता है। इसलिए हमारा मन और हृदय दोनों एक है, तो जब हमारा मन है मन में उनके मन में उदित हो रहे हैं तो हमारे मन में ही उदित हुए, किंतु तो हमारा मन क्या है, वृंदावन। इसलिए वृंदावन में आपके चरण कमल जब उदित करा दें तो हमारे मन में ही उदित होने के बराबर हुआ, इसके लिए और नीचे हम कुछ नहीं जाए, इसलिए आपको वृंदावन। कृष्ण ने कहा जय ओम वस्तु ऐसा ही होगा, मैं चल रहा हूं। गोपियों ने कृष्ण को अपनी मनोरथ में बैठाया और उनको वृंदावन में ला रहे हैं। गोपियां आज बड़ी प्रसन्न है, कुछ गोपी आगे हो गई, कुछ गोपी पीछे हो गई, कोई साइड में हो गई, कोई इधर में हो गई, चार हो गई आगे, एक हो गई दाहिने, एक हो गई बाएं, एक हो गई पीछे। किसी प्रकार से अब ईश्वर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए चारों तरफ से घेर करके उनको ले जा रही हैं। वहां पर प्रधाना गोपी कौन है, महाप्रभु जी स्वयं है, राधा भाव से आकर्ष, इसलिए महाप्रभु जी सबसे सामने हैं और उनके साथ में ये सब चार प्रकार के विपक्ष स्वपक्ष विपक्ष तटस्थ, ये चार गोपियां चार दल हैं सामने और एक साइड में एक इस साइड, ये छ हुआ ना, और पीछे एक पीछे वाले हैं कुलीन ग्रामवासी या द्वैताचार्य प्रभु वाले,
तो ये विपक्ष नहीं,
उनमें चार माने सभी गोपियों का सुदाम जैसे रास में मिला है, इसी प्रकार से ये कीर्तन रूपी रास में सभी लोग समझ, इसमें कोई बात विचार नहीं, सभी लोग इसमें समझ, माने सबको लेकर के
महाप्रभु जी अपने प्रकाश से
सबको लेकर के चल रहे, कृष्ण को ले जा रहे हैं। कृष्ण फिर पीछे से यदि नहीं रहे तो पीछे से जरूर भाग जाए, हम लोगों ने रास्ते समय में विचार नहीं किया, राक्षस में विचार करके यदि ऐसे पहले से ठीक हम व्यवस्था कर लेते तो वो नहीं जा सकते, यहाँ पर चले न जाए, इसे इस प्रकार से कर करके। और महाप्रभु जी कह रहे हैं क्या,
सही
तो पराम नाथ पानी जहाज लागी
मदन मदन,
बहुत दिनों से जिनके विरह में तड़प रही थी आज उनको मैंने पाया है, उनको लेकर के वृंदावन जा रही हूँ। महाप्रभु बीच बीच में अतः राधा जी परीक्षा कर रहे हैं। अच्छे एक बात, यदि इसको हम ले जा रहे हैं इसमें इसकी आंतरिक इच्छा है कि नहीं ये परीक्षा करना जरूरी है। यदि इसकी आंतरिक इच्छा नहीं हुई और हम लोगों ने जोर से इसको लेकर के खींच करके ले जा रहे हैं तो वहां जाकर के दुखी होगा, होगा कि नहीं,
नहीं।
इसलिए ये परीक्षा कर लूं ये सचमुच में
प्रेम उभय में होना चाहिए,
अपने मन से हमारे प्रति आकृष्ट होकर के जा रहा है अथवा जा तो रहा है किंतु भीतर से दुखी है मथुरा को द्वारका को। अब ये कैसे पता लगे, इसलिए वो जानबूझ करके आगे जो चल रही थी तो आगे से वो चल, किंतु आगे कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है उधर से रथ आ रहा है, जगन्नाथ जी उधर से सामने देख रहे और राधा जी किधर से देख रही है, उनके तरफ में मुड़ करके ऐसे नृत्य कर रहे हैं, रथ के सामने में ऐसे आगे सामने करके नहीं, जितने भी चिंतन करने वाले होते हैं आगे पीछे साइड किधर, उनकी दृष्टि किधर रहेगी, जगन्नाथ जी के मुख। इसलिए राधा जी मान ले कि सामने से या जितने भी कीर्तन करने वाले जा रहे हैं उनका मुख किधर में, हाँ आंखें किधर में, जगन्नाथ की तरफ। इसलिए राधा जी भी उनके तरफ में देखती हुई कीर्तन कर रही हैं, अर्थात महाप्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं। उन्होंने देखा जा अच्छा परीक्षा कर रहे हैं कि हमारे प्रेम से आकर्षित होकर के आ रहा है स्वयं खुशी मन से या हमारे दबाव में वो जा रहा है, इसके लिए वो पीछे हो जाते हैं महाप्रभु। जब पीछे हो गए तो रथ बंद हो गया तो फिर राधा जी को वो देख रहे हैं। यदि श्याम चले आगे नहीं गौ चले आगे
श्याम चले पीछे
तो श्याम चले धीरे धीरे स्थिर हो जाता चलता नहीं है एकदम रथ। बड़ी खुश हो गई राजा, बड़ी खुश जब पीछे जब गई और रथ को हजारों आदमी खींच रहे हैं,
हाथी लगाया
हाथी भी लगा रहे हैं, महाप्रभु जी पीछे हो करके अब बैठ गए। आई टोटा या किस में जगन्नाथ टोटा
जगन्नाथ बल्लभ
और भाव में भी झोर हो गए, आंख से आंसू आ गए। और उसी समय में प्रताप रुद्र राजा पहले दिन की घटना और भाव विभोर होकर के जबकि वो आंखों से आंसू आ रहे हैं पेड़ को तकिया बना दिया उसकी जड़ में, इतने में प्रताप रुद्र आए आकर के पहले सब वैष्णवों को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में मिटे आ गए, कपड़े बदल दिए, एक धोती पहनी साधारण रूप में महाराजा का वेश देखकर उनके चरण में और एक एक श्लोक आ गए, जय तिथे गीतम जय मना ये सब इसको करना। और वो महाप्रभु जी सुन करके अब रोना उनका बंद हो गया, उनका ध्यान एकनिष्ठ हो गया उनके शब्दों और बोलो बोलो और अमृत पिलाओ और कम पिला। अब जब वो श्लोक आया तो कथा अमृतम तप कर दिया एकदम हो गया, अब रहा नहीं गया आंख बंद किए हुए उनको। मैं तो सन्यासी हूँ मेरे पास में कुछ देने के लिए, हमारे पास जो कुछ है मैं सर्वस्व तुमको आलिंगन देता, तुम कौन हो तुम कौन हो। ये महाप्रभु जी ने ये नहीं देखा जो ही प्रताप रुद्र राजा विषय उसको भी उन्होंने कृपा करके अपना सर्वस्व उनको। तो वहीं पर महाप्रभु जी ये श्लोक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं ये पद्यावली में रूप गोस्वामी ने इसको ये श्लोक पढ़ रहे हैं, ज कौमार हर, कौमार का जो हरण करता है वो कौन है, पति है, दोनों में मिलन। तो उसके लिए कारण यह हम जह कौमार है, जो हमारे प्रियतम हैं और मैं हूं, दोनों मिले एक जगह, रेवा नदी का किनारा, चैत का महीना बसंत ऋतु, उसमें पेड़ के हैं बेत के पेड़ में कटीली पत्तियां होती हैं, कांटा होता है, बड़ा विषाक्त होता है, किंतु ये बेत का पेड़ इसलिए कहा कि पास ही में कदम्ब खंडी है, कदम्ब के सुंदर सुंदर पेड़ और ये सब नदी, पहाड़ी नदी, छोटी सी नदी
और निर्जन तो
है। निर्जन है, अब फूल विकसित हैं, बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है,
थोड़ा सा
कर रही है, थोड़ी सी हवा में ही
झुकता है,
ऐसी स्थिति में हम और तुम दोनों हैं, कोई तीसरा नहीं है, देखो विवाह भी हम लोगों का नहीं हुआ, प्रथम मिलन हम लोगों का, उस समय में हम लोगों से प्रेम में जो वार्तालाप हुई स्वच्छंद रीति से, आज हमको यही याद आ रही, क्यों आज याद आ रही, तुम वही हो, मैं वही प्रियतमा, आज कोई बंधन नहीं है मिलने में, हम दोनों की शादी हो गई है, शादी शुदा हो गए, पहले शादी नहीं हुई, अब दोनों की शादी हो गई, आप पति हो गए हैं और मैं पत्नी हो गई, और यहाँ पर राजभवन विशाल है, हाथी घोड़े हैं, सास सासुरी और देवर और कितने लोग भरे घर में हैं, गुरुजन हैं ये सब, इसलिए हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं, वही चैत का महीना भी है, कौन भी शीतलमंद बह रहा है, सब कुछ है, वही द्वारकापुरी विराट समुद्र के किनारे भी है, तो भी मन नहीं चाहता, इसमें आनंद नहीं, स्वच्छंद मिलन में, इसलिए वो आनंद, हम तो वही रेवा चित कि वही कंडा, वहीं पर हम निर्जन में आप थे, वहीं पर सर्व नामोदर थे, परे जोर से जगन्नाथ जी की, बलदेव सुभद्रा जी की जय, बोलो जगन्नाथ जी, ऐसे हो, हम मृदंग बज रहे हैं, मृदंग से बज रहे हैं, मानो मेघ गर्जन कर रहे हैं, एक साथ में बहुत जोर से मेघ, एक साथ में
14 माधव जी का,
और कैसे विराम, एक समय गुरु जी के साथ में हम अभी यहीं पर आए, याद आ जाए, गुरु महाराज जी के साथ में हम लोग गए थे नदी में, 108 मृदंग लेकर, एक एक आदमी मृदंग लेकर के, 108 मृदंग और कांसर शंख करताल लेकर के, और निताई गौर हरि बोल, उसमें मृदंगों का शब्द सुन करके ने पिछला ऐसा मेघ गर्जन कर, हमारे आंखों से आंसू अपने आप गिरने, जो होगा उनके आंखों से, तो महाप्रभु के वहां जब मृदंग बजते होंगे और भक्त लोग आनंद से प्रेम में मग्न हो करके लोट पोट कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आंख पर कैसी दशा हो, तो वो ध्वनि से आकाश गूंज रहा, मानो आकाश को भी फाड़ करके काजरे कहां तक वो सबसे चला जाएगा, उसमें किसी एक की बात कोई दूसरा नहीं सुन सकता, ऐसी कितने तरह के बाजे बज रहे हैं, कितने क्या क्या हो, शोर खूब हो रहा है, और महाप्रभु ये श्लोक पढ़ रहे हैं, जय कौमार, क्या नकार खाने में तूती की आवाज एक होती है, तूती माने छोटी सी हल्की, नकार खाने में जहां पर नगाड़े बज रहे हैं वो किसी को नहीं सुनाई पड़ता, ऐसे महाप्रभु जी का यह शब्द किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा, किंतु जो पारखी भक्त हैं वो केवल इस चीज को समझें, स्वरूप दामोदर जी उनके अंतरंग हैं, राधा जी की भाव को केवल वही समझ सकती हैं, कौन ललिता, और उसी के अनुरूप में वो सब कार्य करती हैं, राधा जी रूठ जाती हैं तो राधा जी को शासन करती हैं, रुकने पर। क्यों? राधा जी भीतर से मिलना चाहती हैं, ऊपर से रुकी हुई हैं, इसलिए उनके भावों को समझ करके उनसे मिलाना चाहती हैं, इसलिए कभी उनको शासन करती हैं और कभी कृष्ण को भी शासन करती हैं। तुम कान पकड़ो, आइंदे से ऐसा नहीं करो, तो कृष्ण कान भी पकड़ लो, ऐसी लगता जी प्रचंडा है।
सबसे बड़ी है कृष्ण,
27 दिन बड़ी है। तो बड़ा बड़ा का प्रश्न है यहाँ पर, भाव का बड़ा है, मैंने राधा जी के समस्त भावों को हृदयंगम करके वो समझती है, इसलिए वो समझ रहे हैं केवल स्वरूप दामोदर और कोई नहीं समझ रहा। और वहां पर एक छोटा सा किशोर बालक खड़ा है, उसको कोई नहीं देख रहा है, और वो जैसे भृंग होता है ना कमल के ऊपर में मंडराता है, बस उनके मुख की तरफ में भाव भंगी को देख करके और लुप्त होकर के मानो उसको ग्रहण कर रहा है। ये कौन है? बालक उनके समान तो बालक ही नहीं, बालक माने 24-25 वर्ष के होंगे या बालक किसी और अधिक के, जिससे अधिक नहीं। तो वो बालक बैठा है, उस पर किसी की नजर नहीं जा रही, वहां प्रभु भाव के अंतरंग भाव में बैठे, कभी लोट पोट रहे, कभी कुछ हो रहा है, और कभी कभी एक साथ में सातों दलों में जा रहे हैं, यहां भी नृत्य कर रहे हैं, वहां भी, वहां भी, वहां भी, वहां प्रताप रुद्र राजा जी देख रहे हैं, और उनके पास ही में सार्वभौम भट्टाचार्य खड़े हैं, प्रताप रुद्र जी देखे, ये देखिए तो ये क्या हो रहा है, यहां भी और शासन में उस दल में भी और वहां पर भी, वहां पर भी, जिधर देखते हैं सातों तरफ में महाप्रभु जी एक साथ, ये एक साथ में कैसे हो गया? प्रताप रुद्र ने कहा, यही तुम्हारे ऊपर में कृपा हुई, तुमने रथ के आगे झाड़ू दिया था, महाराज होकर के भी झाड़ू दिया, इसलिए आप पर कृपा, इसलिए आपको ऊपर से नहीं कृपा कर रहे, ऊपर से विषय ही कर रहे हैं और भीतर से तुम्हारे अंदर में भक्ति का स्रोत प्रवाहित कर रहे हैं, ये महाप्रभु जी की कृपा। ऊपर से बड़े निष्ठुर बने हैं, विषय को दर्शन नहीं देते, और भीतर से बहुत सी सब शिक्षा है। इसके बाद में रथ यात्रा में समाप्त हो गया। रूप गोस्वामी जी शाम को चले आए हरिदास ठाकुर की कुटी से, और महाप्रभु जी आई टूटा में चले। इसके बाद में सवेरे महाप्रभु जी गए हरिदास ठाकुर को दर्शन देने के लिए, और रूप गोस्वामी गए थे स्नान करने समुद्र में, स्वर्ग 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 द्वार कहते हैं स्वर्ग। हाँ प्रभु जी ऐसे ही हाथ बढ़ाया, छप्पर का फूस का छप्पर का वो मड़ैया थी फूटी थी, देखा जी एक तालपत्र उनके हाथ में आया, बस तालपत्र निकाला, देखा रही ये तो बहुत सुंदर स्वर्णाक्षरों में लिखा है,
कोई रोक छोड़ बाकी
देखा तो देखा देख करके, अरे ये तो वही भाव जो हमारे किंतु शब्द वाली दूसरी है। हरिदास ठाकुर मुझे कौन लिखा ये? तो ये आप ही का प्रिय लिखा। कहाँ गया? स्नान करने। ठीक है अच्छा रहे, इतने में रूप गोस्वामी स्नान करके आ गए, छोटा बच्चा, उन्होंने उसके पीठ पर एक थप्पड़ मारा, प्यार का थप्पड़, तुमने कैसे हमारे मन की भावनाओं को समझ लिया? और उनके साथ में स्वरूप दामोदर राय रामानंद जी और बड़े बड़े भक्त, कैसे तुमने जान लिया? महाप्रभु ये रूप जी छोटे से बालक ने महाप्रभु का स्नेह जो पाया, एकदम मुग्ध हो बस नीचे देखने लगे, कैसे कहूँ जो मैंने कैसे जान लिया? स्वरूप दामोदर जी ने कहा बच्चे को स्नेह करके कहे, जैसे ये बच्चा के अंदर में आपकी प्रत्यक्ष रूप से कृपा, बिना आपकी कृपा से आपको कैसे मनुष्य भावना को जान सकता है, इसे जरूर आपकी कृपा से। बड़े प्रसन्न हो गए महाप्रभु, अच्छा आप लोग, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आप लोग सभी लोग इस पर कृपा करें, नित्यानंद प्रभु जी, अद्वैत आचार्य स्वरूप दामोदर राय रामानंद और नरहरि सरकार और जितने भी महाप्रभु के प्रिय भक्त हैं सब लोग, जो हमारे भावों को जगत में ये प्रकाश करते हैं, अपने कृपा किया है, और इन भक्तों से भी प्रार्थना करा करके उनके अंदर में वो प्रेम रस की तो वो भाव था। ये वहां पर तो ये था ना जैसे अभी पढ़ा ना, और गोस्वामी ने इसको कृष्ण कहते हैं कि देखो मैं यही कृष्ण ही है, मैं स्वयं वही राधा हूँ। हम लोग वृंदावन में जमुने के किनारे बंशी बट के किनारे हम लोग मिले। महीना था कौन बसंत ऋतु, वृंदावन में तरह तरह के फूल खिले हुए, बेली चमेली धुई मोगरा मोती, और उसके हवाओं के सुगंध को लेकर इछलाती हुई लड़खड़ाती हुई चल रही है वो हवा। सवेरे जाओ ना, देखो वृंदावन में हम लोग सोए हुए थे सवेरे समय 4 बजे 3 बजे, तो धीरे 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 झोंके हवा के कभी कभी आते और बीच में क्वेल कुहक रही है, मोर कभी क्या कहते हैं का और कहीं से सुन ली कोई कोई भागवत पढ़ रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो वैसे चैत्र का आना पसंद करी, कृष्ण भी वही, मैं भी वही राधिका, वृंदावन में हम दोनों का स्वच्छंद मिलन हुआ था। और यहाँ वही कृष्ण है, वही मैं हूं, किंतु कृष्ण का वेश दूसरा। अब वो गोप कुमार से बन गए क्षत्रिय राजा, द्वारकाधीश बने हुए, इनकी बहुत सी पाठरानियां हो गई हैं, 16108 पाठरानियां की, 8 पाठरानियां और इतनी हो गई। और गुरुजन यहाँ पर हैं, कौन, वसुदेव जी, देव जी, उनकी पांडव लोग, ये सब विषम पितामह जी हैं, और बड़े बड़े ऋषि महर्षि नारद इत्यादि हैं, सनत कुमार हैं, उसमें जितने भारतवर्ष के अंगिरा इत्यादि ऋषि, कभी हबी इत्यादि सब ऋषि लोग सम्मिलित हैं। महाराज उस समय में प्रेम करना सुहाता है उन लोगों के सामने, गोपियों से एक तो विजाती स्थिति हो गई है, व्यक्ति रहने से क्या होगा, परिवेश कैसा होना चाहिए, तो वो परिवेश इसलिए कृष्ण से करेंगे, वही आप हैं वही मैं हूं। किंतु अभी आपका क्षत्रिय वेश, क्षत्रिय भाव, क्षत्रिय वेशभूषा सब सांस में क्या है, बंसी है, क्या है, तीर दर्शन, चक्र सुदर्शन इत्यादि, किसके बेटे आप हैं, मेरे पिताजी का नाम वसुदेव, भैया तुम्हारी कौन है, भैया कौन है, इस तरह से वहां पर क्षत्रिय भाव और सेना इत्यादि। इसलिए हम लोग कभी उनमें वो आनंद नहीं, स्वाचंद मिलन नहीं है। इसलिए यदि आप इसको छोड़ करके हमारे साथ में वृंदावन पधारिए, वहां पर हम लोगों का जो स्वच्छंद मिलन होगा उसके लिए हमारा मन ऐसा कम चलेगा। रूप गोस्वामी ने भी कहा, रूप गोस्वामी ने एकदम थपथपाया और अपना प्रेम संचार किया भक्तों से, यही रथ यात्रा का मूल चीज है। इसमें भी एक है, इंद्रजुम महाराज जी जगन्नाथ को एक पेड़ की गुड़ी से, पेड़ के फल से जगन्नाथ भद्रा बलदेव जी को रखने को बनाया, ये पुराने में एक पेड़ की फल बहता हुआ चला रहा था, लाल धन था उसका चक्र का चिन्ह, वो निकल नहीं रहा था समुद्र से, महाराज ने तपस्या की, आकाशवाणी भी उसको समुद्र से निकालो कैसे निकलेगा, तुम्हारा जो पुराना सेवक है कौन बलता लो वो पुलिंग जाति का उसको बुलाओ, और हमारे लिए जो आपको खबर दिया उस विद्यापति दूसरे को बुलाओ और पुण्य कारक बनाओ हमारे लिए कारक बना करके उसको बुलाया, उन लोगों ने जीती जाती और अपने आप अब 4 विग्रह कृष्ण उनको बनाया, कृष्ण ने किसी से बना नहीं, कृष्ण बड़ा होती है और बस का कोई भी जन्म कल हेरा पंचमी का प्रसंग आएगा
25
महाप्रभु जी ने जगन्नाथ जी तारा रथ में आरोहण करते हुए देखा इस प्रकार से दैत्यानों उनको रथ में चढ़ाया और फिर चढ़ा करके पहले बलदेव जी सुभद्रा जी के पहले सबुद्रा जाते बलदेव जी गुरु तत्व जाएंगे फिर सुभद्रा जी और उसके बाद में कृष्ण जबकि जगन्नाथ देव जी वहाँ से आते हैं तो लगते हुए आते हैं इस प्रकार से बड़ा ऊंचा लंबा चौड़ा विग्रह है और ऊपर में मुकुट विशाल मुकुट रहता है पियापुर और कितने लोग बड़े बड़े मजबूत पहलवान जैसे वो लोग कमर में मोटी रेशम की डोरी बांध देते हैं हाथों में बांधते हैं नहीं कमर में भी बांधते हैं फिर हाथों से पकड़ते हैं और एक जगह से पुली बनती है रुई की गद्दियाँ सैकड़ों पुली की रुई की गद्दियाँ बनती हैं और उसमें एक जगह से उठा करके और दूसरी जगह में फेंकते हैं और इतना भार होता है उनको उठा करके वहाँ से वहाँ पर रखना बड़ा भारी मुश्किल होता है और उसमें दैत्या लोग उनको तरह तरह की गालियाँ देते हैं अब वो उसको प्रसन्न चित्त से सुन करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं रथ पर चढ़ाना बड़ा सहज नहीं होता ऊँचे रथ पर सब लोग उनको पीठ से ऐसे कितने बड़े बड़े पहलवान लोग लग जाते हैं ऊपर से खींचते हैं रस्सियों से पकड़ते हैं थोड़े दूर गए एक हाथ का है दो हाथ छलक आए नीचे चले आए बड़ी मुश्किल से डेढ़ हाथ ले गए तो एक हाथ छलक करके फिर नीचे आए सब लोग पसीने से चूर मार हो जाते हैं कभी कभी सारे दिन में चढ़ते हैं कभी दो पहर तक चढ़ पाते हैं कभी शादी में चढ़ जाते हैं वो कोई खेल तमाशा नहीं दिखलाते सचमुच में ऐसा ही होता कोई चढ़ा देगा अपने बल से ऐसा नहीं बहुत बार परीक्षा लोगों ने किया इसलिए जब उनकी इच्छा होती है तब वो चढ़ते तो इस तरह से वो होने पर राजा महाराज प्रताप रुद्र झाड़ू देते हैं सोने की झाड़ू दीनहीन होकर के देते हैं और केवड़ा इत्र और सब चीजों से रास्ते को खुजा करके उसको इसमें एक प्रसंग जुड़ा हुआ है हमने बहुत बार बतलाया कभी संक्षेप में बतला देते हैं इनके पिताजी प्रताप रुद्र राजा के पहले महाप्रभु जी से पहले उनके पिताजी थे उनका नाम पुरुषोत्तम जाना था वो नौ युवक थे 24-25 वर्ष के उनकी सगाई होने आ रही थी तो दक्षिण भारत के विजयनगरम से वहाँ के राजा इनसे भी बड़े अधिक समृद्ध थे वो अपनी लड़की की शादी करना चाहते थे महाराज क्या नाम पुरुषोत्तम जाना से युवराज जब सब ठीक ठाक हो गया तो घर अपने हाथों से देखने के लिए
राजा की स्थिति क्या है, राजभवन कैसा है और सब चीज़ें कैसी हैं, इसको छद्म वेश में आया देखने के। और उसी समय रथ यात्रा चल रही थी, महाराज वो क्या जाना पुरुषोत्तम जाना जी अपने हाथों से सोने की झाड़ू लगा रहे थे। तुमने क्या है, इससे हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, यह राजा खुद झाड़ूदार है, इससे अपनी शादी नहीं अपनी करते। वो लौट करके चला गया। पीछे से इनको मालूम हुआ जो वो लोग सगाई करने आने वाले थे वो आए नहीं, क्या बात हो गया, तो नहीं आ करके वो लोग चले गए, वो आपसे शादी नहीं करेंगे, करेंगे झाड़ूदार से अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे। कहा जी हमको झाड़ूदार मानता है, कहाँ मैं विश्व ब्रह्मांड के प्रभु नियंता जगन्नाथ जी से के सामने रथ पर झाड़ू देता हूँ, रात रथ की चलने के मुझे झाड़ूदार मानता है, तो ठीक है, ऐसा झाड़ूदार होना भी तो बड़े गौरव की बात है। जगन्नाथ जी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया और कहा जिसमें इसका बदला लूंगा, उस लड़की को जीत करके ले आऊंगा और अपने झाड़ूदार के साथ में उसकी शादी करूँगा। ऐसा सोच करके सेनाओं को लेकर के गया, उस पर आक्रमण किया, किंतु उनके सामने इनकी कुछ चली नहीं, हार आए। विशेष करके हारने का कारण ये हुआ कि वो गणेश जी की सिद्धि उसकी थी, गणेश जी की पूजा करता था, इसलिए गणेश जी सब सहायता करते थे उस युद्ध में, इसलिए वो हार गया। फिर लौट आया हारने के बाद और जगन्नाथ जी के पास में आया, प्रभो इस बार फिर मैं चलूँगा आपके सहारे, और यदि इस बार हमारी पराजय हो गई तो मैं अपने प्राणों का विसर्जन दे दूँगा और समझूंगा आपने मेरी सहायता नहीं, इसलिए तिथि और बार सब निश्चित करके। और वो राजा कहाँ गया, कटक राजधानी, और वहाँ से सेनाओं को लेकर के वो आया और जगन्नाथ जी को प्रणाम करके वहीं से जाएगा। जबकि वो कटक से चला जगन्नाथपुरी में आया, उसके पहले ही दो नवयुवक, एक श्याम रंग का और एक गोरा रंग का, एक लाल घोड़े पर एक सफेद घोड़े पर चढ़कर वहाँ से निकले। जगन्नाथपुरी के मंदिर के दक्षिण भाग में ये दोनों घोड़े और दोनों सवार वहाँ पर अभी भी खड़े हैं। वो लोग चले, जब पुरी से चलते चलते वो दोनों नवयुवक चिल्का हड़प में पहुँचे, वहाँ से करीब करीब 40 माइल या कितना होगा वहाँ से पहुँचे। बड़ा बिगड़ रास्ता, बड़ा जंगल का रास्ता, वहाँ पर अहिरों के घर हैं। जब वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि कोई ग्वाली दूध लेकर के, कोई बुढ़िया दही लेकर के आ रही, कोई दही मट्ठा लेकर के आ रही। इन्होंने कहा मैया तुम हमको बड़े गर्मी का दिन है, प्यास लगी हुई है, तू हमें ये मट्ठा या दही हमको पिला देगी, कहे पैसा निकाल।